मनाली की ठंडी हवा जैसे जैसे गाड़ी की खुली खिड़कियों से भीतर आ रही थी, अंकिता के चेहरे की मुस्कान और गहरी होती जा रही थी। घुमावदार सड़कें, देवदार के घने जंगल, दूर बर्फ से ढकी चोटियां और घाटियों में तैरते बादल, हर मोड़ पर ऐसा लगता था जैसे प्रकृति कोई नई तस्वीर सामने रख रही हो। अंकिता हर कुछ मिनट बाद उत्साह से बोल उठती, देखिए वहां झरना, अरे वो पहाड़ तो बादलों के अंदर छिप गया, इतने लंबे पेड़ मैंने तो सिर्फ किताबों में देखे थे। उसकी आवाज में बनावटी उत्साह नहीं था, बल्कि पहली बार दुनिया को इतने करीब से देखने की सच्ची खुशी थी। विशाल उसे देखता रहा। उसे पहली बार महसूस हुआ कि किसी जगह की खूबसूरती सिर्फ उस जगह में नहीं होती, बल्कि उसे देखने वाली आंखों में भी होती है। करीब 2 घंटे बाद टैक्सी एक ऊंची पहाड़ी पर बने शानदार रिजॉर्ट के सामने आकर रुकी। लकड़ी और पत्थरों से बना वो रिजॉर्ट किसी विदेशी फिल्म जैसा दिखाई दे रहा था। चारों तरफ रंग बिरंगे फूलों के बगीचे, लकड़ी की नक्काशीदार बालकनियां, दूर दूर तक फैली बर्फीली चोटियां और सामने बहती नदी की मधुर आवाज। अंकिता कुछ पल तक गाड़ी से उतरना ही भूल गई। ये सच में हमारा ठहरने का जगह है? उसने धीरे से पूछा। विशाल ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, हाँ। अंकिता की आंखें चमक उठीं। वो चारों तरफ ऐसे देखने लगी जैसे कोई बच्चा पहली बार मेले में आया हो। रिसेप्शन पर पहुंचते ही कर्मचारियों ने मुस्कुराकर उनका स्वागत किया। सर, आपकी हनीमून सुइट तैयार है। विशाल ने औपचारिकता पूरी की और कमरे की चाबी ले ली। एक कर्मचारी उनका सामान लेकर आगे चल पड़ा। लकड़ी की लंबी गलियारे से होते हुए वे कमरे तक पहुंचे। जैसे ही दरवाजा खुला, अंकिता अनायास एक कदम पीछे रुक गई। कमरा किसी सपने जैसा था। बड़ी बड़ी कांच की खिड़कियां, जिनसे सामने बर्फ से ढके पहाड़ साफ दिखाई दे रहे थे। लकड़ी की दीवारों से आती हल्की देवदार की खुशबू, कोने में जलता हुआ फायरप्लेस जिसकी सुनहरी लौ पूरे कमरे में एक सुकून भरी गर्माहट फैला रही थी। मुलायम कालीन पर चलते ही ऐसा लगता था जैसे बादलों पर कदम रख दिए हों। बालकनी में 2 आराम कुर्सियां रखी थीं जहां बैठकर दूर घाटियों का दृश्य देखा जा सकता था। बिस्तर को सफेद चादरों और ताजे फूलों की पंखुड़ियों से सुंदर ढंग से सजाया गया था। पास की मेज पर मोमबत्तियां और फूलों का एक छोटा सा गुलदस्ता रखा था, जिससे पूरे कमरे में एक शांत और स्नेह भरा वातावरण बन रहा था। अंकिता की आंखें खुशी से फैल गईं। ये कितना सुंदर है! वो धीरे धीरे कमरे के बीचों बीच पहुंची, कभी खिड़की तक जाती, कभी बालकनी में झांकती, कभी फायरप्लेस के पास खड़ी होकर हाथ सेकने लगती। उसकी खुशी किसी मासूम बच्चे जैसी थी। विशाल दरवाजे के पास खड़ा उसे देख रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे ये कमरा नहीं बल्कि किसी की अधूरी इच्छाएं पूरी हो रही हों। अंकिता अचानक बालकनी की ओर भागी। वाह, यहां से तो पूरा पहाड़ दिखाई देता है। फिर वो वापस कमरे में आई और बड़े आईने के सामने खड़ी होकर खुद को देखने लगी। कुछ ही पल बाद फिर हंसते हुए खिड़की के पास पहुंच गई। विशाल के चेहरे पर अनायास मुस्कान आ गई। इतनी खुश क्यों हूं? उसने पहली बार सहज होकर पूछा। अंकिता कुछ क्षण चुप रही, फिर धीमे स्वर में बोली, मैंने ऐसी जगह सिर्फ टीवी में देखी थी। विशाल ध्यान से सुनने लगा। हमारे घर का माहौल थोड़ा अलग है। कैसा? हमारा परिवार बहुत बड़ा है, सब एक दूसरे का बहुत सम्मान करते हैं। घर की परंपराएं भी आज तक निभाई जाती हैं। लड़कियों को ज्यादा बाहर घूमने की आदत नहीं डाली जाती, इसलिए मैंने दुनिया का ज्यादा हिस्सा कभी देखा ही नहीं। वो मुस्कुराई, लेकिन उस मुस्कान में हल्की सी कसक भी थी। आज पहली बार लग रहा है कि घर के बाहर की दुनिया भी इतनी खूबसूरत होती है। विशाल कुछ पल तक उसे देखता रहा। उसने कभी सोचा ही नहीं था कि अंकिता की सादगी मजबूरी और परवरिश का हिस्सा भी हो सकती है। अंकिता फिर खिलखिलाती हुई कमरे में इधर उधर देखने लगी, कभी पर्दे हटाती, कभी बालकनी का दरवाजा खोलती, कभी फायरप्लेस के सामने हाथ फैलाकर खड़ी हो जाती। विशाल उसे देखता रहा। उसके भीतर का कठोरपन जैसे थोड़ा थोड़ा पिघल रहा था। इतनी छोटी छोटी बातों में भी कोई इतना खुश हो सकता है? उसने मन ही मन सोचा। इसी उत्साह में अंकिता पीछे की ओर मुड़ी, लेकिन उसका ध्यान सामने रखी लकड़ी की कुर्सी पर नहीं गया। उसका पैर कुर्सी के पाए से टकराया। आह! संतुलन बिगड़ती कि वो नीचे बैठ गई। विशाल तुरंत आगे बढ़ा। अंकिता, उसकी आवाज में पहली बार साफ चिंता थी। वो झुककर बोला, इतनी जल्दी क्या थी, देखकर नहीं चल सकती थी? अंकिता ने होंठ भींच लिए। माफ कीजिए, मैंने देखा नहीं। विशाल ने हल्की सी नाराजगी से सिर हिलाया। हर चीज देखने की जल्दी रहती है तुम्हें, अगर ज्यादा चोट लग जाती तो? डांटते हुए भी उसने बहुत सावधानी से उसका हाथ थामा, फिर बिना कुछ कहे उसे सहारा देकर उठाया। जब अंकिता ठीक से खड़ी नहीं हो पाई तो विशाल ने एक पल भी सोचे बिना उसे अपनी बाहों का सहारा दिया और संभालते हुए बिस्तर तक ले आया। वो उसे धीरे से बिस्तर पर बैठाकर उसके टखने की ओर देखने लगा। दर्द ज्यादा तो नहीं है? अंकिता ने धीरे से सिर हिलाया। थोड़ा सा, अब ठीक है। अगली बार दौड़ने से पहले सामने भी देख लिया करो। उसके स्वर में डांक अभी भी थी, लेकिन अब चिंता ज्यादा साफ सुनाई दे रही थी। अंकिता ने उसकी ओर देखा। जी। कमरे में कुछ क्षण के लिए सन्नाटा छा गया। फायरप्लेस की धीमी लपटें लकड़ी पर पड़ रही थी। बाहर बर्फीली हवा बालकनी के शीशों को हल्के से छू रही थी।
विशाल अब भी उसके सामने खड़ा था। अंकिता ने धीरे से नजर उठाई, दोनों की आंखें एक दूसरे से मिली। समय जैसे कुछ क्षण के लिए थम गया। विशाल को पहली बार उसकी बड़ी मासूम आंखों में झिझक से ज्यादा अपनापन दिखाई दिया। अंकिता को पहली बार महसूस हुआ कि विशाल की सख्त आवाज के पीछे एक ऐसा इंसान भी है जो उसकी परवाह करता है, भले ही उसे शब्दों में व्यक्त न कर पाता हो। दोनों कुछ नहीं बोले, बस हल्की सी मुस्कान दोनों के होंठों पर आकर ठहर गई। बाहर पहाड़ों पर गिरती धूप धीरे धीरे कमरे में फैल रही थी और उस शांत पल में उनके बीच की दूरी भी मानो पहले से थोड़ी कम हो गई थी।